ईरान की आवाज।
रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोता, आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद की पवित्र आयतों की तिलावत और उनके अनुवाद से करेंगे। आज आप सूरह आले इमरान की 60वीं से लेकर 63वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं स्वर्गीय मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी।
بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हे पैगंबर, सत्य वही है जो आपके पालनहार की ओर से है, अतः संदेह करने वालों में से न हो जाइएगा। तो हे पैगंबर, जो कोई भी ईश्वरीय संदेश वही द्वारा आपके पास आने वाले ज्ञान के पश्चात आपसे ईसा मसीह के बारे में बहस और विवाद करे, तो उसे कह दीजिए कि हम अपने पुत्रों को लाएं और तुम अपने पुत्रों को, हम अपनी स्त्रियों को लाएं और तुम अपनी स्त्रियों को लाओ, हम अपने आत्मीय लोगों को और तुम अपने आत्मीय लोगों को लाओ, तो फिर हम ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करें और एक दूसरे को अभिशाप दें। तथा झूठ बोलने वालों के लिए ईश्वरीय लानत अर्थात अभिशाप निर्धारित करें। निसंदेह ईसा मसीह के जीवन की सच्ची कहानी यही है और ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है और निसंदेह ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। फिर यदि वे लोग सत्य की ओर से मुंह मोड़ लें तो जान लो कि ईश्वर बुरे कर्म करने वालों को भली भांति जानने वाला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूँ अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@wsirivi.ir और हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492। श्रोताओ, आज शनिवार है, मुर्दाद महीने की दूसरी, जुलाई की 24 और जिलहिज की 13 तारीख। इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। आप सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके उपरांत कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के बाद आप साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान भ्रमण सुनेंगे और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा नया सवेरा। तो श्रोताओ, यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपसे कुछ क्षणों बाद आप हमारी सभा से सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान की क्रांति संरक्षक फोर्स IRGC के प्रमुख ने कहा है कि जब तक खुजिस्तान की जनता की सारी समस्याएं हल ना हो जाएं, हम यहां के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में ईरान को पहला गोल्ड हासिल हुआ है और भारत को पहला रजत पदक प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान में काबुल सरकार ने तालिबान की प्रगति रोकने के लिए देश भर में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इशारों में इराक से अमरीकी सैनिकों के निष्कासन की तारीख का ऐलान कर दिया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान की क्रांति संरक्षक फोर्स IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल सलामी ने खुजिस्तान प्रांत का दौरा किया और आम लोगों के बीच जाकर उनकी कठिनाइयों को करीब से देखा और उनसे विस्तार से बातचीत की। जनरल हुसैन सलामी ने खुजिस्तान प्रांत की पानी की समस्या का जायजा लेने के लिए स्थानीय लोगों के बीच पहुंचने के बाद कहा कि सुप्रीम लीडर के हालिया बयान के बाद देश के सारे अधिकारी अपनी पूरी क्षमता के साथ खुजिस्तान की समस्याओं के समाधान में जुट गए हैं। जनरल सलामी ने कहा कि इस समय खुजिस्तान प्रांत की कठिनाइयों का समाधान पूरे देश की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और IRGC अपनी पूरी क्षमता और संसाधनों के साथ खुजिस्तान की जनता की सेवा के लिए यहाँ मौजूद है और हम उस समय तक यहीं डटे रहेंगे जब तक जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। अफगानिस्तान में सरकार ने देशभर में तालिबान की प्रगति रोकने के लिए रात के कर्फ्यू का ऐलान किया है। इससे एक दिन पहले तालिबान संगठन ने राष्ट्रपति अशरफ गनी को पद से हटाने की मांग की थी। अफगान गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि हिंसा पर अंकुश लगाने और तालिबान की प्रगति रोकने के लिए देश के 31 प्रांतों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी काबुल, पंजशीर और नंगरहार में कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। देश के विभिन्न भागों में तालिबान तेजी के साथ अपने कब्जे वाले इलाकों का विस्तार कर रहे हैं। गुरुवार को अमरीका ने अफगान सेना की मदद करते हुए तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की। तालिबान ने कहा है कि अमेरिका की बमबारी समझौते का उल्लंघन है और अमेरिका को इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी ओर अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में सुरक्षा परिस्थितियों की खतरनाक हालत को देखते हुए भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक बार फिर से सुरक्षा चेतावनी जारी की है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिकों के लिए काम करने वाले एक अफगान अनुवादक की गोलियां मारकर हत्या कर दी। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 32 वर्षीय अनुवादक सुहेल परदीस को तालिबान ने उस समय गोलियों से भून दिया जब वो अपनी गाड़ी से काबुल खोस्त राजमार्ग पर यात्रा कर रहा था। कुछ खबरों में कहा गया है कि तालिबान ने उक्त अफगान अनुवादक को गाड़ी से उतारने के बाद उसका गला चाकू से रेत दिया। भारत नियंत्रित जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के कृष्णा घाटी सेक्टर में एक बारूदी सुरंग के धमाके में एक सैनिक हताहत जबकि दूसरा घायल हो गया। सरकारी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कृष्णा घाटी सेक्टर के नांगी टेकरी क्षेत्र में पिछली रात 10 बजे एक बारूदी सुरंग का धमाका हुआ जिसमें भारत का सैनिक मारा गया जबकि दूसरा घायल हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच आए दिन फायरिंग का आदान प्रदान भी होता रहता है और दोनों देश एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप भी लगाते हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने छापामारों की एक साजिश को नाकाम बनाने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि बांदीपुरा में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 छापामारों को मार गिराया। इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस बात पर बल देते हुए कि उनके देश को अमेरिका के लड़ाका सैनिकों की आवश्यकता नहीं है, इशारों में अमरीकी सैनिकों के देश से निकलने की तारीख का ऐलान कर दिया। कासिम अल आरजी ने, जो अमेरिका के साथ रणनीतिक वार्ता के चौथे चरण की बातचीत में शामिल होने के लिए वॉशिंगटन के दौरे पर हैं, इशारों में देश से अमरीकी सैनिकों के निकलने की तारीख की खबर दे दी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इराक ने अमरीकी पक्षों को बता दिया है कि उसको अपनी धरती पर विदेशी लड़ाका सैनिकों की ज़रूरत नहीं। उन्होंने बल दिया कि 31 दिसंबर 2021 के दिन का अलग ही स्वाद होगा। इराक के प्रतिरोधकर्ता गुटों के कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक बार फिर सारे विदेशी सैनिकों के वास्तविक और संपूर्ण निष्कासन की मांग की है। अलमैदीन टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार बगदाद में इराक के प्रतिरोधकर्ता गुटों के कोऑर्डिनेशन सेंटर का कहना है कि हम सारे विदेशी सैनिकों के निष्कासन पर बल देते हैं। प्रतिरोधकर्ता गुटों के कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार देश के सुरक्षा मामलों में विदेशी सैनिकों का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण संस्थाओं में जासूसी की संदिग्ध गतिविधियों के समान है। इराकी स्वयंसेवी बल हश्दु शाबी ने कार बम बनाने वाले दाइश के 2 आतंकियों को उत्तरी बगदाद से गिरफ्तार कर लिया। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इराकी स्वयंसेवी बल हश्दु शाबी ने इन 2 खतरनाक आतंकियों की गिरफ्तारी की खबर दी जिन्होंने दाइश की दसियों कारों में बम लगाया था और इन बमों को दाइश ने अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया। इराक के प्रतिरोधकर्ता गुट ने अरबील में अमरीकी सैन्य छावनी पर ड्रोन हमले की खबर दी है। एक इराकी प्रतिरोधकर्ता गुट ने इराकी कुर्दिस्तान के अरबील शहर में अमरीकी सैनिकों की छावनी पर ड्रोन हमले की खबर दी। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार लिवाउसायरीन वेबसाइट ने अपने टेलीग्राम पेज पर खबर दी कि अरबील शहर में अमरीका की अलहरीर छावनी पर शुक्रवार को आत्मघाती ड्रोन विमान से हमले किए गए। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इसराइली सेना की फायरिंग में एक फिलिस्तीनी युवा शहीद हो गया। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह फिलिस्तीनी युवा वेस्ट बैंक के क्षेत्र नबी सालेह में इसराइली सैनिकों की फायरिंग में घायल हुआ था जो जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। जहां पश्चिमी देशों की ओर से बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि कोरोना वायरस के वर्तमान घातक रूप लेने और दुनिया भर में इसके प्रसार के लिए चीन जिम्मेदार हो सकता है, वहीं अब ये बहस शुरू हो गई है कि अमेरिका ने बजट देकर चीन के भीतर खतरनाक वायरस के बारे में शोध करवाया। ये मुद्दा विश्व स्तर पर कुछ देशों की ओर उठाया जाता रहा है कि कोरोना वायरस चीन की लेबॉरेटरी से अनजाने में या जानबूझकर फैलाया गया, हालांकि इस विचार की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। चीन की वुहान प्रयोगशाला में चमगादड़ों पर होने वाली रिसर्च को आधार बनाकर ये विचार पेश किया गया। ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے حال ہی میں دعویٰ کیا کہ چین میں امریکی فنڈنگ کی مدد سے کچھ وائرسوں کے بارے میں جن میں کورونا وائرس شامل نہیں ہے ریسرچ کی گئی جو زیادہ گھاتک اور خطرناک تھے اور جنہیں گین آف فنکشن کہا جاتا ہے، مگر امریکہ کے وائرولوجی کے ورشٹھ ویگیانک ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے اس دعوے کا کھنڈن کیا ہے۔ اور اب اولمپکس، ایران کے اسپورٹ شوٹر جواد فروغی نے جاپان میں اولمپک 2020 میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ یہ اس اولمپکس میں ایران کی جھولی میں آنے والا پہلا گولڈ میڈل ہے۔ 41 سال کے فروغی نے 10 میٹر کی دوری کے ایئر پسٹل مقابلے میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے 244.8 پوائنٹ حاصل کیے اور گولڈ میڈل ہتھیا لیا۔ سربیائی شوٹر دامیر مائکیک نے 237.9 پوائنٹ حاصل کر کے سلور میڈل پراپت کیا اور چین کے پانگ وئی کو برونز میڈل ملا، انہوں نے 217.6 پوائنٹ اسکور کیے۔ ٹوکیو اولمپکس کی اوپچارک شروعات 23 جولائی کو ہوئی اور یہ گیمز 8 اگست تک جاری رہیں گے۔ بھارت کو ویٹ لفٹر میرا بائی چانو نے ٹوکیو اولمپک میں رجت پدک دلایا ہے۔ میرا بائی نے اپنی جیت کے بعد کہا کہ میرے لیے یہ ایک سپنے کے سچ ہونے کی طرح ہے، میں اس پدک کو اپنے ملک کو سمرپت کرتی ہوں۔ انتراشٹریہ جوڈو فیڈریشن نے الجیرین جوڈو کھلاڑی اور اس کے کوچ کو آگے کی پرتیوگتاؤں میں بھاگ لینے سے روک دیا ہے کیونکہ فتح نورین اسرائیلی جوڈو کھلاڑی کے مقابلے میں رنگ میں اترنے سے گریز کرتے ہوئے پہلے ہی پرتیوگتا سے باہر نکل گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستوں، میں ہوں روش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچا کے دینک کاریکرم میں۔ آج کے کاریکرم میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے افغانستان میں جاری یدھ کے بیچ ہوائی حملہ کر کے امریکہ دوارا کی گئی واپسی کی۔
سے تا شش ماستادگی کنین جہت جنگ میگن۔
اور پھر بات کریں گے یمنی سینا اور سوئم سیوی بلوں کے دشمنوں کے گڑھ کی اور بڑھتے قدم اور دشمنوں کی اکھڑتی سانسوں کی۔
الجانب السعودی لم يفهم حتى اليوم۔
اور انت میں چلیں گے بھارت، جہاں کشمیر میں سرکشا بلوں اور چھاپہ ماروں کے بیچ جاری جھڑپوں کے بارے میں بتائیں گے۔
اتری کشمیر کے سوپور میں بھارتی سرکشا بلوں اور الگاں وادی چھاپہ ماروں کے بیچ ایک زبردست مڈ بیڑ میں۔
تو سب سے پہلے چلتے ہیں افغانستان اور بات کرتے ہیں اس دیش میں طالبان اور افغان سرکار کے بیچ جاری یدھ کے بارے میں۔ یدھ کی استھتی بدلنے کے لیے جہاں افغان راشٹرپتی نے دیش کی جنتا سے 3 سے 6 مہینوں کا سمے مانگا ہے، وہیں افغانستان چھوڑنے کے بعد ایک بار پھر امریکہ نے طالبان کے ٹھکانوں پر بم برسائے ہیں۔ اس سمبندھ میں کابل سے IRIB کے سنواددتا بہنام یزدانی ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی احمد عباس کی آواز میں۔
پوروی افغانستان کے کپیسا پرانت کے نجراب شہر کو واپس لینے کے لیے پچھلی رات سے افغان سرکار نے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اس بیچ پشمی افغانستان کے ہرات اور کرخ شہر کو افغان سرکار نے ایک بار پھر اپنے نینترن میں لے لیا۔ वहीं अफगान सरकार तालिबान के साथ युद्ध के नए चरण की तैयारी कर रही है, ऐसा चरण कि जिसके बारे में अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि आने वाले 3 से 6 महीनों के भीतर युद्ध की स्थिति बदल जाएगी। अभी तक अशरफ गनी की योजनाओं के बारे में ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि तालिबान के कब्जे में जा चुके महत्वपूर्ण जिलों को आज़ाद कराना उनकी योजना है। अशरफ गनी सीमा पर कस्टम विभागों को भी आज़ाद कराना चाहते हैं जिन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इस बीच अफगानिस्तान से नेटो कमान के स्थानांतरित होने के बाद पहली बार तालिबान सरकार के आह्वान पर अमरीका ने बमबारी की है। तालिबान ने इस हमले के जवाब में कहा है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। वहीं हालिया महीनों में अफगानिस्तान में लड़ाई में तेजी आने के कारण अफगान जनता का विस्थापन जारी है। बेघर हो चुके अफगान लोगों का दर्द सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है। बहुत सारे संगठनों और अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने भी तालिबान पर आरोप लगाया है कि कंधार प्रांत के स्पिन बुल्दक शहर पर तालिबान ने कब्जा करने के बाद बड़ी संख्या में एक ही समुदाय के लोगों पर उन्होंने गोलियां बरसाईं, जबकि तालिबान ने इसे खारिज किया है। झड़पों के जारी रहने के साथ साथ शहरों पर एक दूसरे के होते कब्जों के बीच दोनों पक्ष तालिबान और अफगान सरकार एक दूसरे पर वार्ता की मेज पर न बैठने और शांति के रास्ते में रुकावट डालने और समस्याएं खड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं।
बेहनाम याजानी, खबरगुजार सदा सीमा, काबुल।
और अब चलते हैं यमन और बात करते हैं इस देश की सेना और स्वयंसेवी बलों को लगातार मिलती सफलताओं की। यमनी जियालों ने दक्षिणी सऊदी अरब के जीजान के जबल अद्दूद इलाके में एक व्यापक सैन्य ऑपरेशन चलाकर भारी संख्या में सऊदी एजेंटों को मार गिराया है। इस बारे में सना से IRIB के संवाददाता अब्दुल्ला अली यूसेफी अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी अख्तर अब्बास की आवाज में।
यमनी सेना के प्रवक्ता ने घोषणा की है कि सेना और स्वयंसेवी बलों द्वारा दक्षिणी सऊदी अरब के जीजान के जबल अद्दूद इलाके में एक व्यापक सैन्य ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस सैन्य अभियान में सऊदी सेना के कई ठिकानों पर यमनी सेना का नियंत्रण हो गया, साथ ही बड़ी संख्या में भाड़े के विदेशी सैनिक मारे गए, घायल हुए और गिरफ्तार किए गए। यमनी सेना के एक अधिकारी का कहना है कि सऊदी अरब भाड़े के सैनिकों के ठिकानों को अपनी सीमा के भीतर ले जाने पर मजबूर हो गया है, लेकिन यमनी सेना उन्हें वहां से भी खदेड़कर उन्हें और पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। हम बता देना चाहते हैं कि उन्हें अभी और बड़े हमलों का इंतजार करना चाहिए। सऊदी अरब के एजेंटों की एक एक गतिविधियों पर हमारी नजर है। एक अन्य सेना अधिकारी का कहना है कि सऊदी अरब इस बात को नहीं समझ रहा है कि झड़पों का जारी रहना उसके हित में नहीं है। वो सना और सादा पर कब्जे की सोच रहा है, लेकिन आज वो नजरान, जीजान और असीर को बचाने के लिए मजबूर दिखाई दे रहा है। हमलावर सेना ने बैजा प्रांत के नए मोर्चों पर झड़पों को तेज करके यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों के ध्यान को भटकाने की कोशिश की है, ताकि मारिब और सऊदी अरब की सीमा की ओर यमनी जियालों के बढ़ते कदमों को रोक सकें। वहीं जन आंदोलन अंसारुल्ला के प्रवक्ता ने कहा है कि हमलावरों द्वारा अलकायदा से ली गई मदद भी उनके कोई काम नहीं आई, जिससे अमरीका को भी निराशा हाथ लगी है और सऊदी इत्तेहाद को कई मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ा है। रक्षा मामलों के जानकार का कहना है कि यमनी सेना ने तकफीरी आतंकवादियों के मुकाबले में जो बहुत ही कम समय में सफलता पाई है, वो यमनी बलों के रणक्षेत्र में जीत को दर्शाती है, साथ ही अमरीकी एजेंटों की क्षमता को भी दिखा रही है। वहीं मारिब में यमनी बलों की प्रगति इस बात का कारण बनी है कि अमरीका और अन्य हमलावर तकफीरी आतंकवादियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कई मोर्चों पर सफल सैन्य अभियान सऊदी अरब की साजिशों को विफल बनाने में यमनी बलों की श्रेष्ठता को दर्शाता है, साथ ही साजिशों को विफल करने की भूमिका में यमनी बलों की, साथ ही सनआ की राष्ट्र मुक्ति सरकार की राजनीतिक क्षमता को भी दर्शाता है। बिल्कुल उन क्षेत्रों के विपरीत कि जिन पर हमलावर और उनके एजेंटों का नियंत्रण है, वहाँ केवल भ्रम, कुप्रबंधन और अव्यवस्था ही दिखाई दे रही है।
عبدالله يوسفي خبر جزائري سيدا وسيما صنعاء.
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا اور بات کرتے ہیں بھارت پر شاسط کشمیر میں چھاپا ماروں اور سرکشا بلوں کے بیچ ہوئی تازہ جھڑپوں کے بارے میں۔ ساتھ ہی کورونا کی تازہ استھتی کو دیکھتے ہوئے کشمیر کے اسپتالوں کو آدھونک سویدھائیں دینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں شری نگر سے ہمارے سنواددتا سپت محمد حسن۔
اتری کشمیر کے سوپور میں بھارتی سرکشا بلوں اور الگاوادی چھاپہ ماروں کے بیچ ایک زبردست مڈ بیڑ میں دو الگاوادی چھاپہ مار ہتات ہوئے ہیں، جن میں لشکر طیبہ کا ایک کمانڈر بھی شامل بتایا جاتا ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرکشا بلوں کے لیے بڑی اپلبدھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتری کشمیر میں لشکر طیبہ کے یہ دو سدسیہ کافی سمے سے سکریہ تھے اور جتنی بھی گھٹنائیں گھٹی ہیں ان میں یہ آروپی تھے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں الگاوادی چھاپہ ماروں کے سروں پر ایک بڑی انعام بھی سرکشا بلوں نے رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک وشیش سوچنا ملنے کے ترنت بعد سرکشا بلوں نے اس چھیتر کا گھیراو کیا اور تلاشی ابھیان آرمبھ کیا، جس کے بیچ گھیرے میں آئے الگاوادی چھاپہ ماروں اور سرکشا بلوں کے بیچ ایک زبردست مڈ بھیڑ آرمبھ ہوئی جو کئی گھنٹوں تک جاری رہی، جس میں الگاوادی چھاپہ مار ہتات ہوئے، جن کے نینترن سے بھاری ماترا میں اسلحہ اور گولہ بارود برامد کیا گیا۔ مڈ بھیڑ میں سرکشا بلوں کا کیا کوئی نقصان ہوا یا نہیں، اس بارے میں انسپکٹر جنرل نے کچھ نہیں بتایا۔ یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ پچھلے کئی دوس سے مڈ بھیڑوں کا سلسلہ کافی زیادہ ہوا ہے۔ دکشن ہو یا اتر، ہر چھیتر میں مڈ بھیڑے ہو رہی ہے اور سرکشا ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک آپریشن ابھیان آرمبھ کیا ہے جس کا لکش الگاؤں وادیوں سے کشمیریوں کو مکت کرانا ہے۔
کل دوپہر میں ایس ایس بی سوپیان کو انفارمیشن ملا تھا کہ لشکر طیبہ کا دو تین ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پولیس، آرمی، سی آر پی ایف نے کوڈن ڈالا۔ کوڈن ڈالتے ہی اندر سے گرینیڈ تھرو کیا ملٹنٹ نے۔ اس کے بعد انکاؤنٹر چلتا رہا، بیچ میں ہم لوگ انکاؤنٹر کو روک دیے کیونکہ سولین پھنسا ہوا تھا، اس کو ایویکیٹ کیے۔ اس کا پھر سے انکاؤنٹر ریجیم ہوا، جس میں دیر رات میں دو ٹیررسٹ مارے گئے، جس میں اس بار کا ہمارا ڈار ہے جو لشکر طیبہ کا پرانا کمانڈر ہے، اور یہ 2017 سے ملٹنسی میں ہے اور بہت سارے کلنگ میں انوالو ہے۔
اس بیچ جموں کشمیر پرشاسن نے کہا ہے کہ کووڈ 19 کی استھتی کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی یہاں کے ہاسپٹلز ہیں انہیں جدید سویدھا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ہاسپٹلز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور آئی سی یو بیڈوں کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ اس اوسر پر پرشاسن کے پروکتا نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا،
آئی سی یو دیکھیں، دس از دا کنسپٹ آف سر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلا اس کا مطلب تھا کہ ہم ڈسٹرکٹس میں آئی سی یو اسٹارٹ کریں۔ اٹ از اٹ سیلف اے ویری گریٹ اسٹیپ، اور سر کی گائیڈنس کے اندر ہم نے یہ سارا کچھ کر دیا۔ اور ایک ڈسٹرکٹ میں آئی سی یو بیڈ بننا، حالانکہ پرائمری اور سیکنڈری کیئر میں یہ ایک اچیومنٹ ہے، تو اس کے بعد اس کی جو یہ کنیکٹیوٹی رہ رہی ہے، سپوز ہمیں کہیں سے کوئی پیشنٹ آیا رات کے 2 بجے ہوگا، 2 بجے یہاں سپر اسپیشلسٹ بھی ہمارے ہیں، ہمارے کنسلٹنٹ بھی ہوتے ہیں، اگر وہاں ایم او بھی ہوگا ہی کین کنسلٹ دا ڈاکٹر ہیئر، اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ماڈلٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ نے ہی کہا کہ یہاں لوگ سفر ہو رہے ہیں، کووڈ کم ہو گیا، کچھ خاص بیڈ ہم نے رکھے ہیں 40-50، اس کے بغیر سارا جو ہاسٹل ہم نے کھول دیا جنرل پبلک کے لیے اور ان کے انٹرسٹ کے لیے، ابھی 2-4 دن ہی ہو گئے، یہ سارا سٹریم لائن ہو جائے گا سر۔
ادھر جموں کشمیر میں کے دھارمک دلوں نے ایک بار پھر جموں کشمیر پرشاسن سے بنتی کی ہے کہ دھارمک استھانوں کے کھولے جانے کے لیے وہ نرنے فوری طور پر لیں۔ انہوں نے کہا کہ اب جبکہ کووڈ-19 کی استھتی میں کافی سدھار آیا ہے، پرنتو ابھی تک دھارمک استھلوں کو کھولنے کی انومتی نہیں دی جا رہی ہے، جو ان کے انوسار دینی معاملات میں مداخلت ہے، اور ہم پرشاسن سے یہ آہوان کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اس حوالے سے ایک واضح نرنے لیں اور کشمیری لوگوں کو راحت کی سانس دیں۔ سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
دوستوں، اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں سماپت ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ دوستوں، ہماری آج کی سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا نیا سویرا، لیکن اس سے پہلے پرستوت ہے کاریکرم ایران برہمن۔
ایران برہمن۔ دا दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम अर्दबिल प्रांत की सुंदरता पर प्रकाश डालेंगे। स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार करें।
अर्दबिल प्रांत सरकार और संसद के सुझाव के बाद सन 1993 में पूर्वी अज़रबैजान प्रांत से अलग हुआ और एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में जाना जाने लगा। इस प्रांत में 6 ज़िले हैं: अर्दबिल, बीले सवार, पारसाबाद, खलखाल, गेरमी और मिश्कीन शहर। इस विभाजन के बाद अर्दबिल के ऐतिहासिक ज़िले को इस प्रांत के केंद्र के रूप में चुना गया। अर्दबिल प्रांत एक पर्वतीय क्षेत्र है और इसमें बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके और पहाड़ी चोटियां हैं।
ये प्रांत अपनी ठंडी प्राकृतिक जलवायु और सबालान पर्वत तथा विस्तृत मैदानी इलाकों की वजह से ईरान में कृषि और पशुपालन का ध्रुव समझा जाता है। इस प्रांत का मोगान और मिश्कीन शहर भी काफ़ी ठंडा होता है और प्राकृतिक संभावनाओं से संपन्न है। अर्दबिल प्रांत में गेहूँ, जौ, आलू, प्याज, चुकंदर, तिलहन, मकई, सेब, नाशपति, चेरी और इसी तरह अलग अलग प्रकार के फलों और सब्जियों की पैदावार होती है। इस प्रांत में इसी तरह पशुपालन भी व्यापक स्तर पर होता है तथा मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन की भी सुविधा है, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में शहद पैदा होता है।
इस प्रांत में पैदा होने वाली चीज़ें देश की आंतरिक ज़रूरतों को पूरा करने के साथ ही साथ विदेशों में भी निर्यात की जाती हैं। कृषि गतिविधियों के साथ ही साथ इस प्रांत में औद्योगिक गतिविधियां भी अपनी चरम पर हैं। अर्दबिल प्रांत में औद्योग शहर के अतिरिक्त बुनाई, लोहे की गलाई के बड़े बड़े कारखाने इत्यादि भी सक्रिय हैं। मोगान का चमड़े का कारखाना, आराज केमिकल कारखाना, मिश्कीन शहर का माचिस का कारखाना, सीमेंट का कारखाना, आरता स्लॉटर हाउस, सूखे दूध का कारखाना, दूध और पनीर उत्पादन का कारखाना, दरी निर्माण का कारखाना इत्यादि अर्दबिल प्रांत में सक्रिय हैं।
अर्दबिल प्रांत भी ईरान के बहुत से क्षेत्रों की भांति बुनाई के क्षेत्र में काफ़ी पुराना अतीत रखता है और औद्योगिक लोग तथा कलाकार अपनी अपनी कलाओं को दुनिया के सामने पेश करते हैं। ये उद्योग उनके हस्त उद्योग के रूप में दुनिया में पहचाने जाते हैं। कालीन, वर्णी, जाजिम या एक तरह की दरी की बुनाई जो दुनिया में अपनी पहचान अलग ही रखती है, मोगान और खलखाल जैसे क्षेत्रों में कलाकारों द्वारा बुने जाते हैं। इसी तरह गिलीम और मसनद की बुनाई भी नमीन, अमरान, गेरमी और खलखाल के कलाकारों द्वारा अंजाम दी जाती है और इन्हें अर्दबिल प्रांत के हस्त उद्योग के रूप में दुनिया में पहचाना जाता है।
ऐतिहासिक दृष्टि से भी ईरान का ये इलाका बहुत ही महत्व रखता है। अर्दबिल दो शब्दों से मिलकर बना है: आर्ता, जिसका अर्थ होता है पवित्र, जबकि वील का अर्थ होता है शहर। इन दोनों शब्दों को मिलाकर जो शब्द सामने आता है उसका अर्थ हुआ पवित्र धरती, जो अविस्ताई भाषा से लिया गया है। अर्दबिल में बहुत से पर्यटन स्थल और बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें पाई जाती हैं। अर्दबिल के इतिहास के अतीत को देखते हुए कहा जा सकता है कि अर्दबिल का मुरादलू शहर 40,000 साल पुराना है, जहाँ पर एक शिलालेख है जिसके पत्थर पर नक्काशी हुई है और इस पर लिखी हुई बातों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र के निवासी किस तरह जीवन गुजारा करते थे।
अर्दबिल शहर में होने वाली खुदाई से इस प्रांत की प्राचीनता का पता चलता है, क्योंकि इस शहर में बहुत सी प्राचीन वस्तुएँ मिली हैं, जैसे प्राचीन चाकू, तीर, भाले का फल, पीतल की तलवारें, तीर कमान इत्यादि। इन सब को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सब 3,000 साल ईसा पूर्व के हैं। इस प्रांत में 1800 ऐतिहासिक धरोहर की पहचान हो चुकी है, जिनमें से लगभग 920 को राष्ट्रीय धरोहर की सूची में पंजीकृत किया जा चुका है। शेख सफीउद्दीन अर्दबिली नामक वैश्विक कॉम्प्लेक्स अर्दबिल प्रांत में यूनेस्को में पंजीकृत 19 ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है।
अर्दबील प्रांत का केंद्रीय शहर अपनी विशेष संस्कृति, पर्यटन आकर्षण, सुंदर प्रकृति, गर्म पानी के स्रोतों और कुछ दूसरी सुंदरताओं की वजह से लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। सबालान और अन्य पहाड़ियों ने अर्दबील को अपने घेरे में ले रखा है और इसकी वजह से ये ईरान का सबसे ठंडा इलाका समझा जाता है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली धरोहरों का इतिहास यद्यपि 40,000 साल पुराना है, किंतु अर्दबील प्रांत की प्राचीनता को 5,000 साल पहले का बताया जा सकता है। ये वो शहर है जो सिल्क रोड के किनारे स्थित है और इसके इतिहास में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है। बनी उमैया के काल में अर्दबील आज़रबाईजान का केंद्र था और एक बार मंगोलों ने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इस शहर ने संविधान आंदोलन के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। ईरान की सबसे बड़ी शासन श्रृंखला सफवी शासन श्रृंखला के दौरान अर्दबील का बहुत अधिक महत्व था।
दारुल इरशाद और दारुल अमान व उपाधि है जिसे इस शहर को दी गई थी और सफवी शासन श्रृंखला के दौरान इस शहर में काफी विस्तार हुआ है। काजार शासन श्रृंखला के दौरान उत्तराधिकारी के निवास को अर्दबील से तबरीज स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद इस शहर की चहल पहल में कमी हो गई और आर्थिक दृष्टि से पतन का शिकार हो गया। इस शहर में बड़ी संख्या भूकंप आए। अनेक जातियों और कबीलों के हमलों की वजह से यह शहर कई बार बर्बाद हुआ और विदेशियों के हमलों की वजह से ही यह शहर विकास की राह तय न कर सका।
हालिया वर्षों में इस वर्ष में कुछ विस्तार किया गया है और इस शहर में ऐतिहासिक धरोहरों, विशेषकर शेख सफ़ी और उनके साथियों के मकबरों तथा सरेईन के गर्म पानी के सोतों की वजह से इस शहर ने एक बार फिर अपनी पुरानी प्रतिष्ठा और रौनक हासिल कर ली है। इस शहर की मस्जिद अतीक इस्लाम और इस्लाम से पहले की वास्तुकला तथा कला का उत्कृष्ट नमूना पेश करती है। इस मस्जिद को इस आश्चर्यजनक तरीके से बनाया गया है कि 1500 साल बाद भी ये अपनी कला की गाथा स्वयं सुनाती नजर आती है।
अर्दबील शहर में बहुत से पर्यटन स्थल हैं, किंतु शेख सफीउद्दीन अर्दबीली का अंतर्राष्ट्रीय कॉम्प्लेक्स यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर में पंजीकृत है, इससे खास महत्व हासिल है। ऐतिहासिक दस्तावेजों पर नज़र डालने से इस बात का पता चलता है कि यह कॉम्प्लेक्स 8वीं से 13वीं शताब्दी तक ईरान के परिज्ञानी मत का सबसे बड़ा केंद्र था और इसीलिए अर्दबील शहर में स्थित यह छोटा सा शहर हर प्रकार की सुविधाओं से संपन्न था।
इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इमारत को सन 735 हिजरी कमरी में शेख सफी के पुत्र शेख सदरुद्दीन मूसा के शासनकाल में बनाया गया था। सफवी शासन श्रृंखला के राजा इसका बहुत अधिक सम्मान किया करते थे। इस ऐतिहासिक धरोहर को 2010 में यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहरों की सूची में पंजीकृत किया गया। इस गुंबद का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यहाँ पर लोग ज्यारत और दर्शन के लिए आते हैं, बल्कि इसका महत्व वास्तुकला और इसके निर्माण के तरीके में निहित है।
इस ऐतिहासिक इमारत के मुख्य भागों में शाह नशीन के रूप में केंद्रीय हॉल, अल्लाह अल्लाह गुंबद के नाम से प्रसिद्ध शेख सफीउद्दीन का मकबरा, सफवी शासनकाल के संस्थापक शाह इस्माइल प्रथम का मकबरा, हरमे खाने के नाम से प्रसिद्ध मुहियुद्दीन का मकबरा, चिल्ले खाने, जन्नत सरा मस्जिद, चीनी खाने की इमारत, दारुल हुफाज का हॉल, नमाज खाना या किंदली खाना, दारुल हदीस, शाह अब्बासी द्वार, मुख्य द्वार या बड़ा दरवाज़ा, बाग का हॉल या बड़ा हॉल, छोटा मध्यम हॉल, मुख्य द्वार सा मुख्य आंगन, शहीद गाह कब्रिस्तान के नाम से मशहूर प्रांगण इत्यादि की ओर संकेत किया जा सकता है।
शेख सफी उद्दीन का मकबरा ऐतिहासिक स्थान के साथ ही साथ इस्लामी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना भी पेश करता है। इस इमारत का प्लास्टर ऑफ पेरिस का बेहतरीन काम हुआ तथा टाइल्स और ईंट के सुंदर कामों पर भी बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, जो हर देखने वाले को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस इमारत में म्यूज़ियम भी है, जिसमें चीनियों का म्यूज़ियम, पत्थरों का म्यूज़ियम, पुरातन के बारे में जानकारी का म्यूज़ियम और विशेष पुस्तकालय की ओर संकेत किया जा सकता है।
शेख अर्दिबिली का चीनी खाना या चीनियों का म्यूज़ियम इस इमारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जिस पर सुंदर नक्काशी, सोने के पानी द्वारा सुंदर डिज़ाइनें बनाई गई। इसी तरह इस पर बहुत ही सुंदर इस्लामी डिज़ाइनें और चित्र और मुकर्नसकारी भी की गई है। इस इमारत को शेख बाही द्वारा बनाया गया है और कम तीव्रता के भूकंप को यह आसानी से झेल सकती है। चीनी राजा महाराजाओं की ओर से शाह अब्बासी को 1877 में दिए गए उपहार को चीनी खाने में रखा गया है और इनकी सही ढंग से सुरक्षा भी की गई है। सुंदर चीनी के बर्तन, कूफी लिपि में कुरान मजीद की बेहतरीन लिखावट, सफवी राजाओं की पत्थर की मोहरें और सफवी शासनकाल में चलने वाले सोने के सिक्कों को इस म्यूज़ियम में सुरक्षित रखा गया है। तो दोस्तों, आशा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। नया सवेरा।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम नया सवेरा की कन्ने कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार करें। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि कनाडा के एक ईसाई इजहा किस प्रकार मुसलमान हुए।
मित्रों, आज पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका में लाखों लोग ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार के अपराधों के कारण जेल की हवा खा रहे हैं। रोचक बात यह है कि पश्चिमी देश संस्कृति और सभ्यता में स्वयं को दूसरों के लिए आदर्श समझते हैं और ये देश आज तक सामाजिक कल्याण के मार्गों को न केवल खोज नहीं सके और इन देशों में लाखों व्यक्ति गलत व अनैतिक कार्यों में संलग्न हैं। उनमें से बहुत से कारावास का जीवन भी गुजार रहे हैं और दिन प्रतिदिन इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। यही नहीं, पश्चिमी समाजों में परिवारों के टूटने व बिखरने की प्रक्रिया भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हिंसा, हत्या, बलात्कार और मादक पदार्थों के सेवन जैसे अपराधों के रिकॉर्ड में वहाँ पर तेजी से वृद्धि हो रही है।
इसकी एक महत्वपूर्ण वजह यह है कि पश्चिमी समाज धर्म और आध्यात्मिकता से दूर हो गए हैं, जबकि इस्लाम धर्म में परिवार को उसके सदस्यों के मध्य प्रेम का एक केंद्र बताया गया है। परिवार वह जगह है जहाँ बच्चों की प्रशिक्षा होती है और उन्हें माता और पिता और बड़ों का समर्थन प्राप्त होता है, और जब भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो वे अपने माता पिता और बड़ों और अपने घर के दूसरे सदस्यों को अपना आश्रय स्थल समझते हैं। जबकि पश्चिम में प्रेम और निष्ठा का यह केंद्र दिन प्रतिदिन अपने पतन की ओर अग्रसर है और अधिकांश बच्चे माता या पिता के बिना बड़े होते हैं और दिन प्रतिदिन उन बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है और जो अपने बाप को पहचानते ही नहीं। साथ ही इस प्रकार के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके परिवारों से अलग हो जाएं ताकि स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी गुजार सकें। इस प्रकार की परिस्थिति में इजहाक जैसे निर्धन व मध्यम वर्ग के नवयुवक बुरे व गलत कार्यों में पड़ जाते हैं और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ती है।
इसहाक एक कनाडाई युवा हैं। उनके पिता का संबंध ऑस्ट्रिया से है जबकि माँ का संबंध स्विट्जरलैंड से है। बचपन से उनके पिता की छाया उनके सिर पर नहीं थी और वो अपनी माँ के साथ रहते थे। वो स्कूल में एक अच्छे छात्र थे, परंतु धीरे धीरे वो अपने परिवार से अलग हो गए और गलत रास्ते पर निकल पड़े। स्वयं इसहाक का कहना है कि सड़क से उनकी प्रशिक्षा शुरू हुई और इसी कारण शीघ्र ही उनके खतरनाक और दुष्परिणाम सामने दिखाई देने लगे। इसहाक अभी किशोर ही थे और अधिक कुछ नहीं था और उनके अंदर हर काम के परिणाम को पहचानने की पर्याप्त क्षमता व अनुभव भी नहीं था और वो केवल धोखा देने वाली चीज़ों के विदित को ही महत्व दिया करते थे। स्वयं वे कहते हैं कि 13-14 साल की उम्र में मैंने देखा कि दूसरे लड़के शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और लड़कियों के साथ बाहर जाते हैं और दूसरों से अधिक प्रसन्न भी रहते हैं, तो मैंने भी उन्हीं की तरह ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। बुरी संगत का बुरा असर पड़ता ही है।
कनाडा में गलत व बुरे लोगों के साथ रहने को बुरा नहीं समझा जाता, परंतु बुरे लोगों के साथ रहने का नतीजा बुरा ही होता है। इसहाक के पिता जैसा शुभचिंतक व हितैषी नहीं था, वे बुरे लोगों की संगत में पड़ चुका था, यहाँ तक कि 15 साल की उम्र में उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी। जब वह जेल से रिहा होता है तो दोबारा गलत कार्यों को जारी रखता है, यहाँ तक कि उसकी माँ उसे स्विट्जरलैंड में अपने भाइयों के पास भेज देती है ताकि वह उनके पास कोई काम धंधा करे, परंतु वहाँ भी वह गलत कार्यों को अंजाम देता है, यहाँ तक कि पुलिस उसे ढूंढने लगती है और वह मजबूर होकर स्विट्जरलैंड से कनाडा लौट आता है।
कनाडाई युवा इसहाक अपने देश में गलत और गैर कानूनी कार्यों को यथावत जारी रखता है। उसे गिरफ्तार करके दोबारा जेल में डाल दिया जाता है। जेल बुरे अतीत और अच्छे भविष्य के बारे में सोचने की उचित जगह होती है, परंतु अधिकांश लोग इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते और बहुत कम लोग ही इस बारे में चिंतन कर पाते हैं। वे ये नहीं सोच पाते कि हमने जो कुछ किया वो गलत था और अब ऐसा नहीं करेंगे और भविष्य में एक अच्छा इंसान बनने का फैसला करेंगे। इसहाक की जो सोच थी उसके आधार पर वो स्वयं बयान करता है कि जेल जाने से पहले मैं सोचता था कि अच्छा जीवन यानी शराब पीना, मादक पदार्थों का सेवन और इस जैसी चीज़ों का सेवन, परंतु जेल में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दुनिया में अच्छा और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी है और पैसा ही सफल जीवन को सफल बनाता है।
अलबत्ता इसहाक ने जेल में इंजिल पढ़ना आरंभ कर दिया। वह इस बारे में कहता है कि मैं ईसाई था परंतु कभी भी दुआ नहीं करता था, किंतु ये कि जब मैं किसी मुसीबत में फंस जाता था या जेल में होता था, इसी कारण मैंने जेल में इंजिल पढ़ना आरंभ कर दिया। इस दौरान मेरे पास एक व्यक्ति आया और मैं उसे पहचानता भी नहीं था। उसने मुझे एक कुरान भेंट की और कहा कि इसे पढ़ो, परंतु मैं इस्लाम और मुसलमानों के बारे में अच्छा विचार नहीं रखता था, इसलिए मैंने कुरान वापस कर दिया। इस प्रकार कनाडा के इस युवा ने इस्लाम को पहचानने का अवसर गंवा दिया। जब वह जेल से रिहा हुआ तो उसने उसी फैसले को व्यवहारिक बनाया जो उसने जेल में लिया था, यानी अच्छी जिंदगी के लिए पैसा कमाना।
वो अपने जीवन के इस समय का विवरण इस प्रकार देते हुए कहता है कि जब मैं जेल से निकला तो मैं पैसा कमाने के चक्कर में पड़ गया और देखा कि पैसा कमाने का सबसे आसान रास्ता अपराध और गलत काम है। इस प्रकार की सोच के साथ मैं गलत कामों की जुगत में रहने लगा। मैंने बहुत से अपराध किए और 10 वर्षों तक मैंने भोग विलास और शान की ज़िंदगी गुजारी। मैंने अच्छी अच्छी और कीमती गाड़ियाँ खरीदी और अच्छा मकान खरीदा और इसी प्रकार महंगा और अच्छे कपड़े पहने, परंतु इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाला इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और हमेशा अधिक पाने की कामना में रहता है।
यद्यपि पैसा और ताकत इंसान के जीवन की कुछ समस्याओं का समाधान जरूर करती है, परंतु वे इंसान की वास्तविक खुशी का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत सी समस्याओं का समाधान पैसा और ताकत से नहीं किया जा सकता। इज़ाक भी कहता है कि 10 वर्षों तक मैंने एक करोड़पति का जीवन गुजारा, परंतु जब मेरे पास ये सब चीज़ें थीं तब भी मैंने दिली खुशी और भाग्यशाली होने का आभास नहीं किया। कुछ दूसरे गलत व गैर कानूनी कार्यों के कारण उसे दोबारा जेल जाना पड़ा। अलबत्ता इस बार जेल के उस भाग में इज़ाक को रखा गया जहाँ अधिकांश पैसे वालों को रखा गया था। रोचक बात यह है कि स्वयं इज़हाक कहता है कि जेल में बंद पैसे वाले भी अपने जीवन से प्रसन्न नहीं थे, परंतु जेल में इस बार उसके साथ महत्वपूर्ण घटना घटी और इस घटना के बारे में स्वयं इज़हाक कहता है कि आखिरी बार जेल में जहां वह बंद था वहीं एक मुसलमान भी बंद था। मैंने उसे अपने बारे में बताया और उसने भी अपनी आस्था और अपने जीवन के बारे में मुझे बताया।
उसकी बातें और उसकी आस्थाएं मेरे लिए रोचक थीं, परंतु इस मुलाकात का भी इसहाक के जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और जेल से आज़ाद होने के बाद वो दोबारा गलत और गैर कानूनी कामों में लग गया। यहाँ तक कि उसके जीवन में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना घटती है। वो एक मुसलमान महिला से परिचित हो जाता है। उस महिला की माँ कनाडाई युवा का आह्वान करती है कि वो कुरान का अध्ययन करे। इस बार उसने गंभीरता से और दिल लगाकर कुरान का अध्ययन शुरू किया। इसहाक कुरान का अध्ययन करते समय चकित हो जाता था। इस बारे में वो स्वयं कहता है कि मेरे लिए ये बात बड़ी रोचक थी कि पैगंबर की जो विशेषताएं इंजील में पढ़ी हैं वही विशेषताएं कुरान में भी हैं। इंजील और कुरान की बहुत सी कहानियां समान थीं। मैंने बहुत अध्ययन किया किंतु केवल समस्या ये थी कि ईसाई धर्म में हज़रत ईसा मसीह को ईश्वर का बेटा माना जाता है और अगर मैं इस बात पर आस्था न रखूं तो मुझे ईसाई धर्म से बाहर कर दिया जाएगा।
इज़हाक ने अपना अध्ययन जारी रखा ताकि बेहतर ढंग से इस्लाम को पहचानने और पूरे विश्वास के साथ इस्लाम का चयन अपने जीवन के लिए करें। वह कहता है कि मुझे एक सच्चा धर्म ढूंढना चाहिए, मुझे उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अधिक अध्ययन के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इस्लाम ईश्वरीय धर्म है और मैंने کلمہ پڑھ لیا۔ بہرحال جگیاسو یووا اظہاق نے ورشوں تک گمراہی کا جیون ویتیت کرنے کے بعد اسلام کو گلے لگا لیا اور اس سمے وہ شانتی کے ساتھ سچائی اور مکتی کے مارگ کا انوبھو کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام نے میرا بھاگیہ سوار دیا، جبکہ میری زندگی میں اسلام کے علاوہ سب کچھ تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔
کناڈائی یووا واستوک اسلام کو دوسروں کو پہچانوانا چاہتا ہے اور یہ بتانے کے پریاس میں ہے کہ اسلام نیائے، پریم اور شانتی کا دھرم ہے، جبکہ پشچمی سنچار مادھیم اسلام کو ہنسا پریمی دھرم بتانے کی چیشٹا میں رہتے ہیں۔ اسی پرکار پشچمی سنچار مادھیم یہ دکھانے کا بھی پریاس کرتے ہیں کہ مسلمان پاگل ہوتے ہیں، وہ جھگڑالو پروتی کے ہوتے ہیں اور وہ سوئم کو وسفوٹ سے اڑا لینا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، اسحاق سیدھے ان کا آہوان کرتا ہے کہ اسلام اور اسلامی شکشاؤں کو وہ سمجھنے کا پریاس کریں اور اسلام کا ادھین کریں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر دھرم پریورتن نہ کرنے یا مسلمان نہ ہونے کا ارادہ ہو، تب بھی کم سے کم اسلام کا ادھین کریں اور یہ سمجھنے کا پریاس کریں کہ مسلمان کیسے رہتے ہیں اور اتنے سارے لوگ کیوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ قرآن کو پڑھیے، اور اب تو اس کا وبھن بھاشاؤں میں انواد بھی ہو چکا ہے۔ تو دوستو، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، آپ سے انومتی چاہتے ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤں، ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9510 کلو ہرٹز پر سن رہے تھے۔ ہماری ویب سائٹ ہے pastory.com/hi اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir۔ تو اسی کے ساتھ ہماری یہ سوا یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ اگلی ملاقات تک احمد عباس اور دوسرے سبھی ساتھیوں کو انمتی دیجیے۔ خدا حافظ، شبھ راتری۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔